आपकी निस्बत से किसी साहिब इल्म ने बयान किया कि गामी साहब जो फरमाते हैं कि इल्हाम के ज़रिए इंसान नबी बन जाता है और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को इल्हाम नहीं हो सकता, तो वो ये कहते हैं कि जो नबुवत है वो सिर्फ इल्हाम का नाम नहीं है, वो चार चीज़ों का नाम है। पहला ये कि वो वहबी अमल होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कसबी नहीं होता। दूसरा ये कि फरिश्ते आके कान में बात करते हैं। तीसरा, जिसको मुंतखब किया जाता है उसको तकलीफ़ होती है। और चौथा ये कि वो मामूर मिनल्ला होता है। तो अब अगर कोई शख्स मसलन हमारे सूफिया में से कोई खड़ा होकर अगर ये कहता है कि भाई मुझे भी इल्हाम होता है, लेकिन वो इन बाकी चारों चीज़ों की नफ़ी कर रहा है कि ना मुझे अल्लाह ने मुंतखब किया, ना मेरे पास कान में फरिश्ता आकर मुझे कहता है, ना मैं मामूर हूँ किसी मिशन मकसद के लिए, तो फिर तो वो हरीम नबूवत में कोई नकब नहीं लगा रहा।
ये बात यह है कि जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि लम यबका मिनन नबुआ, तो आप चार चीज़ों को नबुवत कहें, पांच को कहें, वो तो ख़त्म होंगी। जिनको आप नबुवत कह रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी।
ठीक
यानी अब नबुवत की किस्म की कोई चीज़ तो हो नहीं सकती। इल्हाम का लफ्ज़ दो पहलुओं से इस्तेमाल होता है। एक, हम उन चीज़ों को भी इल्हाम कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं इल्हामी शायरी है फ़लाँ की, शायरों को कहा जाता है ये तो तिलमीज़ुर रहमान है। ये इल्हाम वो इल्हाम नहीं है जो यहाँ ज़ेरे बहस है, ये वही वो वही नहीं है। यानी वही और इल्हाम के अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से उसके तकवीनी निज़ाम में रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इल्हाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, वही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये एक बिल्कुल और इस्तेमाल है और कुरान मजीद ने इनको इस्तेमाल किया है। सब इंसानों के बारे में ये कहा है कि हमने जब उनको बनाया तो वह नफ्सिम वमा सवाह फ़अलहा महा फजूरा व तकवा, तो उसके लिहाज से तो एक एक इंसान को, फासिक व फाजिर को भी ये इल्हाम हुआ हुआ है।
ठीक।
अच्छा, इसी तरह से जैसे कहा कि शायद की मक्खी को हमने वही की, तो ये ज़ाहिर है कि चरिंद परिंद को होती है, सिर्फ शायद ही की मक्खी को तो नहीं हुई। तो ये बिल्कुल और चीज़ है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा था कि महसूस तौर पर मुखातबा इलाही ये नबूवत है, ये इल्हाम और इल्हाम है, ये वही और वही है। वही जब कलाम की सूरत इख्तियार करती है, इल्हाम जब कलाम की सूरत इख्तियार करता है, तो ये नबूवत का खासा है। और अल्लाह के पैगंबर ने ये फरमाया है कि लम यबका मिन नबूवत शई, नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रही। लम यबका मिन नबूवत इल्लल मुबशरात, यानी नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जितनी चीज़ें भी उसके खास, ना अब कोई मबूस होगा, ना किसी को मुखातबा इलाही होगा, ना किसी को मामूर किया जाएगा। जितनी चीज़ें आप बयान कर रहे हैं इनमें से हर चीज़ ख़त्म हो गई है। जो चीज़ बाकी रह गई वो अल्लाह के पैगंबर ने ख़ुद बयान कर दी है, और वो जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि वो तो नबूवत के खसाइस में से है ही नहीं। यानी वो नबियों को भी हासिल होती है, वो गैर नबियों को भी हासिल होती है। एक ही वक्त में देखिए कुरान बयान कर रहा है कि रोया सादिका है, ना बादशाह का ख्वाब झूठा था, ना नानपुस का ख्वाब झूठा था, ना शराब पिलाने वाले का, साकी का ख्वाब झूठा था, सारे ख्वाब सच्चे थे, सब की ताबीर बयान की गई। तो अब मुझे ये बताइए, सबको आप नबूवत में से कुछ हिस्सा अता फरमाएंगे? यानी बाकायदा मकदार मुतय्यन करके कहेंगे कि बादशाह में इतनी नबूवत थी, साकी में इतनी थी, नानफुज में इतनी थी। ये नबूवत की चीज़ ही नहीं है। नबूवत मुखातबा इलाही है, नफ़ी उसकी की जा रही है। उसका दरवाज़ा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंद हो गया। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे पहले भी, रसूलुल्लाह से पहले भी, वो दरवाज़ा किन के लिए खुला था? क्या नबियों के सिवा भी किसी के लिए खुला था? नबियों ही के लिए खुला था। यानी लफ्ज़ नबूवत का इतलाक उन खसाइस पर किया जा रहा है जो नबियों के लिए है, और वो खसाइस क्या है? उनमें सबसे पहली चीज़ मुखातबा इलाही है, दूसरी चीज़ उनका मामूर होना है और अल्लाह की तरफ से मामूर होना, और तीसरे वो मिशन है जिसको वो लेकर आते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो बिल्कुल मुतय्यन है। ये जो हमारे यहाँ तशरी गैर तशरी नबी की बात की जाती है, तो ये भी बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी जब किसी को नबूवत का मनसब मिलता है, बल्कि रिसालत का मनसब, ज़रूरी नहीं कि उसको शरीयत भी दी जाए। यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। अपनी कौम के लिए अदालत बन के आए हैं, उनको क़यामत की निशानी करार दिया गया है, इसलिए कि उनकी दैनूनत क़यामत तक रहेगी। बहुत गैर मामूली शख्सियत, लेकिन हज़रत मूसा की शरीयत के पैरों हैं। तो ये दर हकीकत कुछ चीज़ें नहीं हैं। असल चीज़ ये है कि आप अल्लाह की किताब से अल्लाह के बारे में चलेंगे कोई बात कहने के लिए, या अपना कोई फ़लसफ़ा बनाएंगे? तो अल्लाह की किताब को सामने रख कर बताइए کہ کیا چیز پہلے تھی اور کیا چیز اب باقی ہے، ذرا بتائیے کیا چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی دعوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے خیار الناس کا انتخاب کیا. جن کا اللہ انتخاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نبی کہا ہے میں نے. یہ انتخاب محبت ربانی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عنایت سے انتخاب ہوتا ہے، نہ کسی چلے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نہ کسی ریاضت کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے راہ چلتے ہو جاتا ہے. شبانی سے کلیم ہی دو قدم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تم کو دے دی گئی ہے. تو یہ انتخاب جب ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے پیغمبر کو؟ براہ راست مخاطبہ الہی. اور اس کی صورتیں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے، یعنی جو سورہ شورا میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین صورتیں اختیار کرتے ہیں، براہ راست بات کریں گے، پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے جھاڑی کے اندر سے یعنی حجاب کے اندر سے ایک آواز سنی، بات ہوئی، باقاعدہ مکالمہ ہوا، یہ مخاطبہ الہی ہے. تو پیغمبری کی ابتدا یہاں سے ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ کوئی چیز وحی کرتا ہے، یعنی وہ دل میں الفاظ ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو لے کے آتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کریں، یعنی وہاں کلام یا آواز آپ کے یہ ظاہری کان نہیں سن رہے ہوتے لیکن باطنی کان سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کلام ہی ہوتا ہے. تینوں صورتوں میں کلام ہے، باقاعدہ بات ہے، باللفظ ایک بات کہی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم انسان لفظوں ہی میں چیزوں کو سنتے ہیں، تو یہ باللفظ کہی جاتی ہے لیکن طریقے مختلف اختیار کر لیے جاتے ہیں، اس کو نبوت کہتے ہیں. یہ ختم ہو گئی. اب محسوس رابطے کا خاتمہ ہو گیا، جو چیز باقی رہ گئی، یا تو بات ہی اتنی ہوتی نا، جو چیز باقی رہ گئی اس کو حضور نے بیان کر دیا. اس واضح، اس بالکل تصریح کے ساتھ کہی ہوئی بات میں آپ کیا تاویل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ باقی ہے تو نص پیش کیجئے، کہاں سے بات کریں گے؟ اگر نص نہیں ہے، آپ اپنا کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی قیاس کر رہے ہیں، تو آپ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات تم اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بڑے گناہوں میں اس کو قرار دیا ہے کہ من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ کی طرف سے کوئی بات کہنا اور آپ کے پاس اس کے لیے استدلال صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. صراحت کے ساتھ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فلاں چیز باقی رکھی ہوئی ہے اور میرا مخاطبت اب بھی حاصل ہو جائے گی اور نبوت نام کی کوئی چیز اقتصابی طور پر بھی لوگوں کو مل جایا کرتی ہے؟ یہ سب چیزیں قرآن مجید میں کہاں کہی گئی ہیں؟ کسی حدیث میں کہی گئی ہیں؟ ذرا بتا دیجیے.